अब आप रजनीश कुमार यादव के आवाज में महादेवी वर्मा के अपरा में संकलित कविता की पांचवा शीर्षक आज क्यों तेरी वीणा मौन के व्याख्या एवं विशेषताओं को सुनेंगे। आज क्यों तेरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर स्पंदन भी भूला जाता, और मधुर कषक सा आज हृदय में आन समाया कौन। आज क्यों तेरी वीड़ा मौन, झुकती आ पलके निश्चल चित्रित निद्रित से तारक चल, सोता पारावार दृगो में भर भर लाया कौन। आज क्यों तेरी वीड़ा मौन, बाहर घनतम भीतर दुखतम, नभ में विद्युत तुझ में प्रियतम, जीवन पावश रात बनाने सुधिवन छाया कौन। आज क्यों तेरी वीड़ा मौन। कवयित्री ने अपने प्रिय से यह अभिलाषा व्यक्त की है कि यदि मैं तुम्हारे दर्शन स्वप्न में कर पाती तो अपने हृदय में अनादि काल से पलती हुई प्यास उस सीमित क्षण में मिटा लेती। निर्जा के इस गीत में कवयित्री ने प्रिय को संबोधित कर यह जानना चाहा है कि आज उसकी वीणा मौन क्यों है, अर्थात प्रिय अपने प्रेयसी के समक्ष अपने उद्गार प्रकट क्यों नहीं कर रहा है। कवयित्री कह रही है कि हे प्रियतम, आज तुम्हारी वीणा मौन क्यों है, और वीणा को सुन पाने से इतना तन शिथिल पड़ने लगा है तथा हाथ थके से जान पड़ते हैं और मन में उदासी छाई हुई है। कवयित्री के कहने का अभिप्राय यह है कि प्रिय की वीणा न सुन सकने के कारण मेरा मन अत्यंत व्याकुल और हाथ पैर व संपूर्ण शरीर ही थके से निर्जीव जान पड़ते हैं। कवयित्री का प्रियतम से कहना है कि तुम्हारी वीणा के स्वरों से मेरा हृदय स्पंदित होने लगता था, अब इतने दिनों से वीणा न सुनने से उस स्पंदन का आनंद भी मैं भूलने सी लगी हूँ, और मेरे हृदय में जैसी एक मीठी कसक के रूप में तुम समा गए हो। कवित्री प्रियतम से कह रही है कि आज तुम्हारी वीणा मौन क्यों है। कवित्री का कहना है कि एक प्रकार की मूर्छता सी मुझे घेर रही है और मेरी पलकों ने अपनी स्वाभाविक गति छोड़ दी है तथा वे भी निश्चल होकर झुक जाती हैं। कवित्री प्रिय से कहती है कि मैं ही क्या संपूर्ण विश्व तुम्हारी प्रेममय झंकार के अभाव से मूर्छित सा है, और चंचलता तारागण भी चित्र लिखे से स्थिर तथा निद्रित हो गए हैं। कवित्री का कहना है कि आज मेरे नेत्रों में करुणा और व्यथा का पारावार लहराने लगा है तथा अश्रु एक निरंतर बहने लगे हैं, स्रोत की भांति प्रवाहित हो रहे हैं। कवित्री प्रिय से कहती है कि आज तुम्हारी वीणा क्यों मौन है। कवित्री कह रही है कि बाहर घनघोर अंधकार छाया है और आकाश मेघ छत्र होने के कारण अंधकार से घिरा हुआ है। कवित्री अपने प्रिय से कहती है कि यदि इस अंधकार से कोई ज्योति है तो वह मेरे हृदय में विद्यमान तुम्हारा अस्तित्व ही उसी प्रकार है जैसे सघन बादलों में बिजली छिपी रहती है। कवित्री अपने प्रिय से कह रही है कि मेरा अंतर तुम्हारी आभा से ज्योतिर्मय है और जीवन में तुम्हारी सुधी हाहाकार झंझा व्यथा एवं पीड़ा आदि की वृद्धि कर देती है तथा जीवन वर्षा की रात्रि के समान अशांत निराशा के अंधकार से परिपूर्ण हो जाता है। कवयित्री का कहना है कि वर्षा की रात्रि में जैसे जल वर्षा करता है वैसे ही प्रिय के वियोग में प्रिय स्मृति में मेरे आंसू रात भर गिरा करते हैं, और जिस प्रकार वर्षा में वातावरण अशांत होकर अंधकारमय होता है उसी प्रकार मेरा हृदय वेदना एवं व्यथा से अशांत है तथा वह निराश के अंधकार से पूर्ण है। कवयित्री प्रिय से कह रही है कि आज तेरी वीणा मौन क्यों है। इन पंक्तियों में कवयित्री ने प्राकृतिक उपादानों की सहायता से अपनी वेदना का साकार चित्रण किया है। अब आप रजनीश कुमार यादव की आवाज में महादेवी वर्मा के छठवीं कविता श्रृंगार कर ले सजनी नामक शीर्षक की व्याख्या एवं विशेषताओं को सुनेंगे। श्रृंगार कर ले सजनी नवछीर निधि की उर्मियों से रजत झीने मेघ शीत मृदु फिनमय मुक्तावली से तैरते तारक अमित सख सिहर उठती रश्मियों का पहिन अवगुंठन अवनी हिम स्नात कलियों पर जलाए जुगनुओं ने दीप से ले मधुपराग समीर ने वनपथ दिए हैं लीप से गाती कमल के कक्ष में मधुगीत मतावली अलिनी तू स्वप्न सुमनों से सजा तन विरह का उपहार ले अगणित युगों की प्यास का अब नयन अंजन सार ले अलि मिलन गीत बने मनोरम नुपुर की मधुर ध्वनि इस पुलिन के अणु आज हैं भूली हुई पहचान से आते चले जाते निमिष मनुहार से वरदान से अज्ञात पथ हैं दूर प्रिय चल भीगती मधु की रजनी श्रृंगार कर ले रे सजनी। प्रस्तुत कविता में श्रीमती महादेवी वर्मा ने सुरम्य प्राकृतिक पीठिका का चित्रण कर यह स्पष्ट करना चाहा है कि प्रिय के दूर देश में होने पर प्रेयसी को स्वयं श्रृंगार कर उसके समीप पहुंचने के लिए तैयार होना चाहिए। कवित्री कह रही है कि ए सखी आज श्रृंगार कर ले। कवित्री का कहना है कि आज चांदी के रंग के सफ़ेद चंचल बादल ऐसे झीने और हल्के जान पड़ते हैं जैसे नवीन क्षीर सागर अपनी चंचल लहरों से शोभायमान हो और आज का वातावरण अत्यधिक मधुर एवं मादक है। कवित्री कहती है कि बादलों से पूर्ण आकाश में असंख्य तारे ऐसे तैर रहे हैं जैसे मधुर फेन से युक्त मोतियों की कतार सी फैली हो और प्रेयसी के सदृश धरती ज्योत्सना का घूंघट डाल सिहर उठती है। कवित्री कह रही है कि प्रियतम की स्मृति से इस मधुर वातावरण में शरीर रोमांचित हो उठता है और पृथ्वी पर ज्योत्सना फैली हुई है तथा उसके आवरण में धरती सिहर सिहर उठती है। कवित्री का कहना है कि उक्त वातावरण में कलियां ओशों की रसासिक्त बूंदों से अपनी गोंद भरे हुए हैं और हिम से श्रात की हुई उन कलियों पर जुगनू अपने दीप जला रहे हैं। कवित्री कहती है कि चारों ओर फूलों का मकरंद उड़ रहा है और ऐसा जान पड़ता है जैसे स्वयं पवन में मधुपराग से वन के रास्तों को लीप दिया है। कवित्री कह रही है कि कमलों के पुष्प पराग पर बैठी मतवाली भ्रमरी मधुर गीत गा रही है और भवनों के गुंजार से भली भात मलयानील में गुंजित है। कवित्री कहती है कि यदि भी प्रियतम पास नहीं है पर उन्हीं की आभा से प्रकृति की सभी वस्तुएं अलौकिक हैं और प्रियतम के हृदय का उल्लास प्रकृति के अवयवों से दिखाई देता है। कवित्री का कहना है कि ऐसे समय में हे सखी तो विरह का उपहार लेकर स्वप्न सुमनों से अपने शरीर को सजा ले अर्थात तू प्रियतम की मधुर स्मृति से अपने हृदय को सजाए रख और उनकी योग व्यथा में भी तेरे लिए वरदान हो जाए। कवित्री को कह रही है कि हे सखी तेरी तो प्यास अनंत है और तू चिर वियोगिनी भी है तथा तेरे नेत्र उस अनंत वियोग की साक्षी बने अर्थात तेरे नेत्रों में वियोग की छाया दिखाई दे। कवित्री कहती है कि हे सखी तुम अपने नेत्रों में अगणित युगों की प्यास का अंजन लगा ले और प्रिय के नुपुरों की मादक ध्वनि ही तेरे मधुर मिलन गीत बन जाए तथा प्रियतम की मादक मधुर स्मृतियों तुझे मिलन गीत के समान सुखदायक प्रतीत हों। कवित्री का कहना है कि हे सखी जीवन रूपी नदी के किनारे पर जो स्मृति रूपी बालू के कण फैले हुए हैं वही मेरी भूली हुई पहचान के समान है और भले ही कभी प्रिय से तेरा मिलन हुआ हो पर अब तो वियोग इतने दिनों का हो गया है कि स्मृति पर भी धुंध सा छाने लगा है और पहचान जैसे कुछ कुछ भूली सी हो गई है। कवित्री कहती है कि प्रियतम की मादक स्मृति के क्षण में ऐसे ही व्यतीत हो जाते हैं और वे मधुर क्षण मनुहार के समान दुख सुखदायी हैं तथा वरद के समान प्रिय और अमूल्य हैं। कवित्री का कहना है कि आज की रात्रि मधुसिक्त है, अतः रस से भीगती इस रात्रि में प्रियतम का वियोग असहनीय है और हे सखी तू बैठी मत रह, अर्थात प्रियतम की प्रतीक्षा में अपने समय को व्यतीत करो। कवित्री कह रही है कि हे सखी, प्रियतम के देश का मार्ग भले ही अनजान हो और प्रियतम भी दूर देश में हो, पर तू उस दिशा की ओर अपने चरण बढ़ा और अपने शरीर को भी सजा ले। इन पंक्तियों में कवित्री ने सभी प्राकृतिक वस्तुओं से प्रिय की आभास को प्रकट किया है। वह स्पष्ट करना चाह है कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है और उसको पृथक नहीं किया जा सकता। निर्जा की इस कविता से कवित्री ने प्रारंभ से ही प्राकृतिक वातावरण का सुमधुर चित्रण किया है और हमें कवि की उत्कृष्ट कल्पना कविता के माध्यम एवं भावनाओं का अनायास प्रयास करते हुए कहा है, ऑल गुड इज पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इस कविता के प्रति पूर्ण चरितार्थ सिद्ध होता है, साथ ही यह कविता रहस्यवादी विचारधारा से ओतप्रोत भी है। इस प्रकार कवित्री का कहना है कि परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है और आत्मा परमात्मा का अंश होने के साथ साथ आनंद का अनुभव करती है, तो विराट सत्ता के आनंद स्वरूप के कारण ही और साधक को अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए। कवित्री का विचार है कि प्रकृति पति अर्थात परमात्मा की प्रकृति आते मनोरम है और उसकी यह मनोहरता उस सौंदर्य छवि के आगार की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा आत्मा को देती है तथा विरह वेदना का शम्यत लेकर आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न भी होता रहता है। रजनीश कुमार यादव के आवाज में महादेवी वर्मा के सातवीं कविता के शीर्षक कौन तुम मेरे हृदय की व्याख्या एवं विशेषताओं को सुनिए। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घूमड़ घिर झरता अपरिचित, स्वर्ण सपनों का चितेरा नींद के सोने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में, अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर चूमने पद चिन्ह, किसके लौटते यह श्वास फिर कौन बंदी कर मुझे अब बध गया अपनी विजय में, कौन तुम मेरे हृदय में। एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित, एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान सत सत, पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कौन तुम मेरे हृदय में। गूंजता उर में न जाने दूर के संगीत सा क्या, आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या, क्या नहीं आई विरहनिशी मिलन मधु दिन के उदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित, आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित, सुन रही हूँ एक ही झंकार जीवन में प्रलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। मुख सुख दुख कर रहे मेरा नया श्रृंगार सा क्या, झूम गर्वित स्वर्ग देता नत धरा को प्यार सा क्या, आज पुलकित सृष्टि क्या करने चली अभिसार लय में, कौन तुम मेरे हृदय में। प्रस्तुत कविता में श्रीमती महादेवी वर्मा ने अंतःस्थित ब्रह्म का सामान्य परिचय प्राप्त प्रस्तुत कर उसे विशिष्ट रूप में परिचित होने की अभिलाषा व्यक्त की है। कवित्री कह रही है कि मेरे हृदय में निवास करने वाले तुम कौन हो। कवित्री पुनः कहती है कि वह कौन है जो मेरी पीड़ा को चुपचाप मधुरता प्रदान कर जाता है और प्रिय दर्शन के लिए प्यासे इन नेत्रों में आंसू बनकर बरस पड़ता है तथा नींद के नीरव निवास में रम्य स्वप्नों को चित्तित करने वाला और मेरे हृदय में निवास करने वाला कौन है। कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने हृदय में स्थित अदृश्य शक्ति का परिचय प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा व्यक्त की है। कवित्री कहती है कि मेरी सांसें किसके पीछे निरंतर बढ़ रही हैं और किसके पद चिन्हों को चूमने के लिए वह सांसें मचल उठती हैं तथा वह कौन है जो मुझे जीतकर अपनी विजय में बंध गया है अर्थात मेरे हृदय में अपने लिए अस्थाई स्थान बना गया है। कवित्री कह रही है कि मेरे हृदय में निवास करने वाले तुम कौन हो। वस्तुतः कवित्री ने यहाँ यह स्पष्ट करना चाहा है कि यद्यपि उसका आराध्य उसके समीप ही है पर वह उसका परिचय प्राप्त करने के लिए विकल है। विशिष्टताएं इन पंक्तियों में श्रीमती महादेवी वर्मा ने हृदय की विहलता का स्वाभाविक चित्रण किया है। कवित्री कह रही हैं कि मेरे हृदय की एक पीड़ा पूर्ण अभाव में ही अमर संतोष का संसार छिपा हुआ है पर इस अभाव के बिना तृप्ति असंभव ही है और एक पल मुझे मुक्ति के सैकड़ों वरदान दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि मुझे मुक्ति प्राप्त करने की दीर्घ साधना करनी पड़ती है पर कवित्री की हृदयगत प्रेम भावना का कुछ इतना अधिक प्रभाव है कि एक पल में भी सैकड़ों मुक्तियां चरण चूमती हैं और कवित्री अब यह सोचती है कि उसने पीड़ा के इस व्यापार में किसे प्राप्त कर लिया तथा आखिर वह कौन है जो उसके हृदय में निवास कर रहा है। कवित्री के कहने का अभिप्राय यह है कि मानव जीवन में निरंतर व्याप्त रहने वाले अभावों के मूल में करुणा भी अनिवार्यतः विद्यमान रहती है और उसके उक्त अभावों में संपूर्ण विश्व की तृप्ति समाहित है। कवित्री का कहना है कि मेरे हृदय में किसी दुरागत संगीत की मधुर ध्वनि व्याप्त हो गई है और यह मैं नहीं समझ पाती कि इस पीड़ा को प्राप्त करने के पश्चात मेरे हृदय में दूर के संगीत की भांति किसका माधुर्य झलक पड़ा है। कवित्री कहती है कि आज अपने व्यक्तित्व को खोकर मैंने अपना साथी प्राप्त किया है पर यह विचित्र अर्थात विपरीत घटना ही है क्योंकि व्यक्तित्व के खो जाने पर तो सब कुछ खो जाता है लेकिन यह अपनत्व खो जाने पर ही मुझे खोई हुई वस्तु प्राप्त हुई है। कवित्री का कहना है कि क्या विरह की रात मिलन के बसंत दिवस के प्रभात में स्नान कर आई है और वह कौन है जो हृदय में निवास कर रहा है। कवित्री ने यहाँ वियोगिनी के विरह का की रात्रि में मिलन का आनंद प्राप्त करते हुए माना है। इन पंक्तियों में प्रणय भावना की समुज्ज्वलता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ रूपक और विरोधाभास अलंकार है। कवित्री कह रही है कि संसार का स्वरूप अंधकार के समुद्र की भांति है और इस अंधकार के सागर में प्रकाश की मूर्ति अडिग बनी हुई है अर्थात अज्ञान अंधकार में भी कवित्री के समक्ष प्रकाश की एक किरण शेष है। कवित्री कहते हैं कि अब तक मेरे हृदय में वियोग की ज्वाला के कारण विशिष्ट ताप विद्यमान था पर अब वह ज्वाला कपूर की मधुर सुगंध की वर्षा करने लगी है अर्थात आराध्य के मिलन की मधुरता मन में संजो रखी है। फलस्वरूप कवित्री को विरह भी सुख व शीतलता प्रदान करती है। कवित्री कह रही है कि मुझे आज जीवन व विनाश दोनों में से किसी एक की ही झंकार सुनाई दे रही है अर्थात मैं मन की विषमताओं को दूर कर जीवन व विनाश दोनों में समान संतुलन की स्थिति का अनुभव करती हूँ। कवयित्री कह रही है कि मेरे हृदय में निवास करने वाले तुम कौन हो जो मुझे विश्वास का सहारा प्रदान कर रहे हो। कवयित्री का कहना है कि मेरे जीवन में सुख व दुख चुपचाप नए रूप में क्यों सजा रहे हो और अभिमानी स्वर्ग क्यों झुकी हुई धरती से मिल रहा है, तथा क्या आज संपूर्ण विश्व हर्ष विभोर होकर नाश की गोद में सोने जा रहा है। इस अवतरण की अंतिम पंक्तियों का यह अर्थ भी किया जाता है कि धरती नवीन श्रृंगार कर मन में किसी विशिष्ट लय गति को लेकर प्रसन्न भाव से अभिसार के लिए गमन कर रही है। कवयित्री ने इन पंक्तियों में संसार के स्वरूप को अंधकार का सागर मानते हुए यह संकेत देना चाहा है कि यद्यपि संसार को माया बंधन मानव मन को अपने से उलझा कर स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवकाश नहीं देते, पर तो भी मानव मन में प्रकाश की एक किरण शेष रहकर उसे यह आश्वासन देती है कि वह कभी न कभी ईश्वर की अनुकंपा अवश्य प्राप्त करेगा। इसी प्रकार विरह भी उसे सुख व शीतलता प्रदान करता है। सुख दुख मानव जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। वस्तुतः निर्जा की इस कविता में कवयित्री की रहस्यवादी भावना ही अभिव्यक्त हुई है और अंत स्थिति वाह्य के संबंध में प्रश्नात्मक व साधनात्मक दोनों प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए रहस्यवादी साधना पद्धति की आत्मानुभूति संबंधी पक्ष को गंभीरतापूर्वक प्रतिपादित किया गया है। कवयित्री ने वाह्य के व्यापक प्रभाव का भी उल्लेख किया है और यह भी मानती है कि इस रहस्य भेदन से उसके मन को नवचेतनता प्राप्त हो गई है। साथ ही इस कविता में प्रगीतात्मकता, शब्द माधुरी और प्रवाह योजना आदि विशेषताएं भी विद्यमान हैं। अब आप रजनीश कुमार यादव के आवाज में महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निर्जा में संकलित आठवीं कविता के शीर्षक ओ पागल संसार की व्याख्या एवं विशेषताओं को सुनिए। ओ पागल संसार, मांग न तू है शीतल तममय जलने का उपहार, करता दीप शिखा का चुंबन पल में ज्वाला का उन्मीलन, छूते ही करना होगा जल मिटने का व्यापार, ओ पागल संसार। दीप जल देता प्रकाश भर, दीपक को छ जल जाता घर, जलने दे एकाकी मत आ हो जावेगा छार, ओ पागल संसार। जलना ही प्रकाश उसमें सुख, बुझना ही तम है तम में दुख, तुझमें चिर दुख मुझमें चिर सुख, कैसा होगा प्यार ओ पागल संसार। सुलभ अन्य की ज्वाला से मिल, झुलस कहाँ हो पाया उज्ज्वल, कब कर पाया वह लघु तन से नव आलोक प्रसार, ओ पागल संसार। अपना जीवन दीप मृदुलतर वर्ती करने जिसने सिक्त उर, फिर जो जल पावे हंस हंसकर हो आभा साकार, ओ पागल संसार। प्रस्तुत अवतारणिका में निर्जा की इस कविता में कवयित्री ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि उसे वेदना ही प्रिय और वह जलने का ही उपहार चाहती है। कवयित्री कह रही है, हे पागल संसार, तू यद्यपि निराशा और व्यथा के अंधकार से पूर्ण है, परंतु यह वेदना ही हृदय की करुणा को शीतलता प्रदान करती है। यह स्मरणीय है कि मधुर एवं कंठ भावों को जन्म व्यथापूर्ण हृदय में ही होता है और यही कारण है कि इन पंक्तियों से पागल संसार को शीतल तममय कहा गया है। कवयित्री पागल संसार से कहती है कि तू तो केवल जलने का उपहार प्रिय से मांग, क्योंकि पतंगा हमेशा दीप शिखा का चुंबन करता है और क्षण भर में ही वह स्वयं ज्वालामय हो जाता है, अर्थात जलकर राख हो जाता है। कवयित्री का कहना है कि दीप अवश्य ही स्वयं जलता है, पर जलकर ही वह चारों ओर प्रकाश देने में समर्थ होता है। कवयित्री कहती है कि हे पागल संसार, प्रेम की ज्वाला बहुत तीव्र होती है और तुझे हमेशा ध्यान में रखना होगा कि तू एकाकी ही अच्छा है, क्योंकि यदि तू प्रेम के समीप आवेगा तो तुझे नष्ट हो जाना पड़ेगा। अतः अपने आपको जल जाने के लिए तैयार होकर ही तुझे प्रेम मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। इन पंक्तियों में कवित्री ने प्रेम से अभिप्राय आत्म बलिदान का ग्रहण किया है और वह आत्म बलिदान को ही प्रेम का सार भी मानती हैं। इसलिए वह पागल संसार से यह कहती हैं कि उसे प्रेम करते समय दीपक की ज्वाला में भस्म होने वाले पतंगे का आदर से ग्रहण करना चाहिए। कवित्री कहती है कि हे पागल संसार, यदि तू प्रेम ज्वाला में जलता रहेगा तभी उज्ज्वल प्रकाश से तू पूर्ण रहेगा, क्योंकि उसमें जलना ही प्रकाश अर्थात यश पाना और अपने प्रेम में बुझना या प्रेम का घटना तो अंधकार है, तथा अंधकार का दूसरा नाम दुख है। कवित्री का कहना है कि प्रणय ज्वाला में जलने का नाम ही सुख और प्रिय प्रेम स्वरूप होने के कारण हमेशा प्रेम की ज्वाला से पूर्ण रहता है। कवित्री कह रही हैं कि इस पागल संसार में हमेशा दुख विद्यमान रहा है और मैं प्रेम का रसास्वादन चाहती हूँ अर्थात प्रेम के सुख का उपभोग करना चाहती हूँ, अतः मुझे चिर सुख ही है। इन पंक्तियों का अभिप्राय यह भी ग्रहण किया जा सकता है कि कवित्री को प्रिय का चिर वियोग है और पीड़ा में ही सुख होने के कारण वह कवित्री वेदना से परिपूर्ण होने से चिर सुख का अनुभव कर रही है तथा पीड़ा अभाव को दुख मानती है। साथ ही वह प्रियतम को आनंद स्वरूप मानने के कारण उसमें चिर दुख का अनुभव करती है। इस प्रकार इन पंक्तियों में हमें अत्यंत सुंदर विरोधाभास के दर्शन होते हैं। कवित्री का कहना है कि पतंगा तो दीप शिखा से स्वयं ही जाकर मिलता है, अतः वह आभायुक्त कैसे हो सकता, क्योंकि वह तो स्वयं ही झुलस जाता है। कवित्री यह कह रही है कि अपने छोटे से तन से पतंगा भला नवीन ज्योति का प्रसार कैसे कर सकेगा, क्योंकि आत्मा प्रियतम से पूर्ण प्रेम के लक्ष्य तक पहुँचने के पूर्व ही हास